आज हम लोग श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 28वां अध्याय क्या 25वां अध्याय का श्लोक क्रमांक 19 का श्लोक है। नानारण्य मृग व्रातैर अनाबाधे मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः नानारण्यमृगव्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः नानारण्यमृगव्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः नानारण्यमृगव्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो नानारण्यमृगव्रातैर्नाबाधे मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः नानारण्यमृगव्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः वैष्णवीस् नानारण्यमृगव्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतैः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः नाना विभिन्न अरण्य वन मृग पशु व्रातैः समूहों से अनाबाधे अहिंसा के मामले में मुनिव्रतैः मुनियों के तुल्य आहूतम मानो बुलाए जा रहे हो मन्यते सोचता है पांतः यात्री पथिक यत्र जहां कोकिल कोयल के कूजितैः कू कू करने से क्वेल करता है इसे ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे यही नहीं सर्वत्र कोयलें कूज रही थीं उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार वन के शांत वातावरण के सदृश है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। कभी कभी स्त्रियों तथा बच्चों को स्वजना के दस्यु कहा जाता है जिसका अर्थ है कि स्वजनों के नाम से लुटेरे। मनुष्य अत्यंत परिश्रम से धन कमाता है, किंतु उसको पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हत्या लिया जाता जिस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों की यह धमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होती है। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित किया जाकर मनुष्य जो आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। इस दुनिया में जन्मे सब जीव लगभग 99% जीव भटक ही जाते हैं, भगवान को भूल ही जाते हैं, इस दुनिया के ऐशोराम में फंस जाते हैं। ऐसे फंस गए लोगों में से एक था, नाम था उसका प्राचीन बरही राजा। तो वो विविध तरह के पुण्यों को अर्जित करके इस दुनिया में सुखी जीवन बनाने के लिए वो बनाने के प्रयत्न में लगा हुआ था। वो ऐसे वो पुण्य कार्यों में जैसे कर्मकांड यज्ञों में लगा था कि वो भगवत ज्ञान नहीं तो वैकुंठ की संदेश सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। वो जैसे हमने ये कथा सुना कि एक समय की बात है कि नारद मुनि ने सारे भारत में भ्रमण करके देखा, उन्होंने कोने कोने में लोग इतने धार्मिक कार्यों में लगे हैं, वैसे तो भारत पुण्य भूमि है, तो उन्होंने देखा कि कुंभ मेला चल रहा है, अभी कुंभ मेला है, उधर जाकर देखा 3 करोड़ 4 करोड़ लोग थे कुंभ मेला में। नारद मुनि आंख पहुँच कर देखा कि क्या कलयुग आ गया, सत्ययुग आ गया, अभी इतने लोगों का भीड़ आ रहा है धार्मिक कार्य के लिए। वैसे ही देखा रामेश्वरम में जाकर देखा, उधर भी लाखों लोग थे, गिरिराज परिक्रमा करने वाले और लाखों लोग थे। इस तरह भारत के कोने कोने में उन्होंने देखा कि सब तीर्थ स्थलों में इतना भीड़ छा गया। नारद मुनि को शंका हुआ कि ऐसे कैसे धार्मिक लोग बढ़ गए भारत में इतने, तो उन्होंने सोचा कि हमारा मार्केट बड़ा खुल गया, हमको प्रचार करके सबको पॉकेट में डालकर भगवत धाम लेके जाएंगे, ऐसे उन्होंने सोचा। क्योंकि धार्मिक लोगों को प्रचार करना आसान है ना, क्योंकि वो पहले से भगवान से जुड़े हैं, भगवान के सामने झुकते हैं, शास्त्र को मानते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तो ऐसे उन्होंने सोचा है। तुरंत वो भगवान के पास गए, नारायण के पास जाकर पूछा कि कितने लोगों को हम ला सकते हैं, इतने लोग भरे पड़े हैं भारत में, लगता है कि एक हम वैकुंठ जाने का वैकुंठ पासपोर्ट का दुकान खोलेंगे, सबको वैकुंठ पासपोर्ट देकर हम लेके जा सकते हैं, कितने लोगों के लिए अनुमति है। आप जानते हैं जैसे इधर से अमेरिका जाना हो, उन दिनों में थोड़ा आसान था, लेकिन आजकल के ज़माने में ट्रंप आने के बाद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गया अभी है। वो बोलता है भारत से कोई मत आओ और इधर भी जो भी हैं उनको भी भगा देंगे, ऐसा बोल रहा हो। तो नारद मुनि ने पूछा कि कितने लोगों के लिए अनुमति है, विष्णु तो मुस्कुरा रहे थे, बोले कि जितना लाना है उतना लाओ, कुछ पाबंदी नहीं है, जिसको रुचि है आने की इच्छा है, ये तो घर है, घर खुला है हमेशा बच्चों के लिए, हैं कभी भी आ सकते हैं। तो नारद मुनि खुश हो गए, तो वापस लौट आकर प्रचार काम चालू किया। सब लोग नारद मुनि के प्रचार देकर ताली बजाए, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं था कोई। हाँ, सब लोग, किसी ने बोला कि देखिए अभी मेरा छोटा बेटा है, बड़ा होने के बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। कोई बोला कि हमारा बेटी है, उसको शादी करके सेटल करने के बाद हम आएंगे। कोई बोला कि हमारा बेटा बेटी सब सेटल हो गया, लेकिन उनको बच्चे नहीं हुए अभी तक, बच्चे होने के बाद हम आएंगे। कोई बोला उनके बच्चे हो गए, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, मुझे वॉकिंग के लिए लेके जाना उसको, थोड़ा बड़ा होने के बाद आऊँगा। कोई बोला मेरे बेटे के बच्चे हैं, लेकिन वो बड़े होकर उनका शादी जब होगा तब आऊँगा, ऐसे बोलते गए अलग अलग लोग, कुछ ना कुछ बहाना बता रहे थे सब लोग। जैसे बक्सान से ठाकुर एक कहानी बोलते हैं कि दो मित्र थे उधर बंगाल में, एक मित्र था बहुत गंभीर था भक्ति में, दूसरा था उसको वो ऐसे दिखावा करता था कि वो धार्मिक था लेकिन रुचि नहीं था उसको भक्ति में जीवन में, लेकिन उसको सिनेमा जाना घूमना घामना इसमें रुचि था उसको। तो एक दिन फ्रेंड ने क्या बोला, अरे नवद्वीप में बहुत बड़ा एक फेर, फेर को क्या बोलते हैं, फेर मेला, हाँ मेला रहा डाला बड़ा मेला है वो बोला। तो उसके मित्र ने बोला मेला है क्या, किसका मेला है, बोला अरे अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे सिनेमा भी दिखाते हैं उधर अंदर, अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं ड्वार्फ हैं भवन है वो तमाशा करते हैं, इस तरह आपको देखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी उधर। अच्छा ऐसा है क्या, तो उसके मित्र ने बोला मैं जा रहा हूँ तुम कहाँ हो तो आओ। तो ये हमारे भक्त जो था वो उनको लेकर मैं मेला में गया। उसका योजना था क्या, मन में क्या था उसका, मेला में लेके जाऊंगा उसको और गंगा जो था उन दिन में सिर्फ घुटनी तक था गंगा, उस समय गहरा नहीं था उतना। उसने बोला कि गंगा को पार करके उसको लेके जाऊंगा ऐसे। तो मेला देखने के लिए मित्र गया, तो मेला के बीच में हमारे भक्त ने बोला उसको, हाँ देखो इधर से महाप्रभु का जन्म स्थान जो है ना ऐसे गंगा को पार करके उधर जाना है बस इतना ही। वो बोला नहीं 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 ये देखो गंगा, गंगा को पार कैसे कहा जाएंगे अभी है, तो उस समय कुछ नाव नहीं मिला है। वो बोला कि देखो गंगा का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा ना उसके बाद मैं आऊँगा। तो मित्र बोला अरे गंगा का लेवल तो अभी घुटनी तक ही है बस जा नहीं सकते हो। वो बोला नहीं नहीं जब घुटनी से अभी और नीचे जाएगा ना पाँव तक जब गंगा हो तब आऊँगा करके उन्हें भाग गया वो वापस। तो भक्तिवेदांत ठाकुर बोलते हैं कि इसको जाने के लिए मन नहीं था इसलिए बहाना बता रहा था वो ऐसे। इसी तरह से नारद मुनि के पास भी सब लोग बहाना बता रहे थे। नारद मुनि बहुत दुखित हो गए, अरे इतने लोग धार्मिक दिख रहे हैं लेकिन रुचि क्यों नहीं है इनको भगवत धाम लौटाने के लिए, आश्चर्य हुआ उनको। तो तब एक व्यक्ति तैयार हुआ, वो पूछा कि मैं आ रहा हूँ मैं ज़रूर अभी पा करके आ जाता हूँ लेकिन कब वापस लौटने की प्रोग्राम है, ऐसा पूछा। वो बोला अरे मूर्ख तुमको मालूम नहीं यद गत्वा ना निवर्तन्ते, कभी वापस लौट आते नहीं, कोई भगवतधाम लौट गए एक बार कभी कोई आता नहीं वापस। वो बोला ऐसा है क्या, पहले क्यों नहीं बोला आपने, मैं भी नहीं आ रहा हूँ बोला उसने भी है। तो ये लोग कौन है, इनको भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि दे आर कॉल्ड एज पायस मेटेरियलिस्ट, पायस मेटेरियलिस्ट। देखिए मेटेरियलिस्ट है पायस मेटेरियलिस्ट है, दो तरह के भौतिकवादी हैं, एक नास्तिक भौतिकवादी एक आस्तिक भौतिकवादी, दो लोग हैं। अभी नास्तिक भौतिकवादी क्या सोचते हैं, इस दुनिया में जो भोग आ सकता है भोग के लिए मिल सकता है, खाओ पियो मजा करो बस, उसका प्रोग्राम है ऐसे। लेकिन आस्तिक क्या सोचता है, मैं अलग अलग मार्ग ढूंढूंगा भोगने के लिए, उनमें से एक और भी एक भी अच्छा मार्ग है जो धार्मिकता है। अगर 20 मार्ग है 21वां मार्ग और एक मिले, अगर संतोषी माता के पास जाते हैं शिरडी में जाते हैं ऐसे कुछ 3-4 स्थानों में जाकर कोई जागृत मूर्ति है दगुड़ुशेट है ऐसे कहीं तो जाकर हम जो हमको पकड़ में आता है कुछ भौतिक भोग तो हम इधर उधर जाएंगे हम पकड़ लेंगे, थोड़ा धार्मिक कोने में क्या कम पड़ने वाला है हमको। इस तरह वो आस्तिकता में जुड़कर अपने लिए जो मांगे हैं उसको पूर्ति करने के लिए भगवान को भी जोड़ लेता है, वो आस्तिक भौतिकवादी है। इसलिए दोनों भौतिकवादी ही हैं ऐसे लोग। तो ये भी ऐसे ही था, कौन, प्राचीन परिषद। उसने सोचा कि मैं कर्मकांड करूंगा स्वर्ग में जाऊंगा सुख विलास भोगूंगा इस तरह, लेकिन अपने बच्चों को भेज दिया तपस्या करने के लिए जंगल में। उनके बच्चे कौन थे, प्रचेत, उनको भेज दिया। नारद मुनि को हंसी आया, अरे बच्चों को भेज दिया तपस्या करने के लिए, खुद इधर भोग विलास में पड़ा है। तो उनकी उद्धार करने की इच्छा हुई नारद मुनि को, लेकिन नारद मुनि ने सोचा कि ऐसे लोगों को उद्धार करना थोड़ा मुश्किल है, सोने वाले को उठा सकते हैं लेकिन जो तो जगा हुआ है लेकिन सोया नहीं है, लेकिन जगने के लिए मन नहीं है उसको, जैसे आजकल ठंडी बजता है बहुत सुबह है ना, अगर कोई बोलता है आपको प्रभु जी मुझे 3:30 बजे उठा दो आप जाकर उसको छूने से तुरंत वो जग जाएगा, वो है तुरंत रेडी होकर आ जाएगा वो। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो 4 बज गया है, लेटा है, वो उसका आंख तो खुला है लेकिन उसके अंदर एक आलसीपन है, उठने के लिए मन नहीं कर रहा है। आप उसको छूने से क्या करता है, मुड़कर दूसरी बाजू में सो जाता है, और ऐसा करो इस बाजू में सो जाता है। बोलता है अभी क्या 4 ही हुआ ना, और आधा घंटा है, उठ जाएंगे, 5 मिनट सोते हैं करके 5 घंटा सो जाएगा वो, है ऐसे है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो स्लीपर स्लीपर प्रिटेंडिंग स्लीपर है, दो लोग हैं, किसको उठा सकते हैं आप? स्लीपर स्लीपर उठा, असली रूप में कोई सो रखा हो तो उसको उठा पाएंगे आप, लेकिन जो नींद नहीं है लेकिन ऐसे ही ड्रामा कर रहा है, उसको आलस ही, उठने की मन नहीं है उसका। हाँ, एक दिन हमने देखा, एक वक्त था वो बोल रहा था, उसको उठाया गया 4 बजे, उठा नहीं, 4:15 को उठा नहीं, 4:20 4:25 हो गया। तो एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी 5 मिनट में कैसे तैयार हो के आप आएंगे? बोला, वो बोल रहा है कि आई थिंक आई एम सिक, ऐसे बोला, मुझे लग रहा है कि हमको थोड़ा बुखार है। तो उन्होंने बोला, प्रभु जी आपको कुछ दवाई चाहिए क्या खाने के लिए? हाँ, उतना बुखार नहीं है, दवाई खाने, दवाई वो लोग आते हैं जिनको ज़्यादा बुखार, हमको उतना बुखार नहीं है। कितना बुखार है? उतना ही बुखार है जितना सोने के लिए चाहिए, उतना ही है, समझना आपने। इस तरह से जो लोग प्रिटेंडिंग स्लीपर हैं, ऐसे एक कैटेगरी में था कौन? प्राचीन भरि है। प्राचीन भरि अपने बच्चों को भेज दिया तपस्या करने के लिए जंगल में, बोला कि देखो बच्चे आपको शादी करके सेटल होना है, लेकिन शादी के पहले आपको तपस्या करना चाहिए, मन इंद्रियों को संयम करो, चित्त को शुद्ध करो, और जाकर तपस्या करके वापस लौटाओ, राज्य के बाहर को संभालो, लेकिन उसके पहले तपस्या करना है। अपने बच्चों को बोला तपस्या करना है, भेज दिया, लेकिन खुद बैठा है उधर। हाँ, तो तब नारद मुनि आ पहुँचे, उन्होंने सोचा कि अरे इसको उठाना आसान काम नहीं है, ऐसे प्राचीन परिषद जैसे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि इसको कुछ मालूम नहीं है, कर्मकांड वगैरह कर रहा है, धर्म में जुड़ा है। इस तरह हमने भी देखा, ट्रेन में जाते समय कुछ किताब देने के लिए जाते हैं, कुछ लोग चंदन कुमकुम वगैरह लगाए हैं, कुछ लोग हैं, हम सोचते हैं अरे धार्मिक लोग हैं, गीता कर देंगे, तो आप कुछ किताब दिखाओ, बोलेंगे ऐसा करेंगे, बोल रहे अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम करते जाइए, वितरण बुक वितरण कर रहे हैं, हम धार्मिक किताब वितरण कर रहे हैं, कितना अच्छा काम है। मैं बोला एक व्यक्ति को बोला मैंने, देखिए बोल रहे हैं कि मैं अच्छा काम हम कर रहे हैं, तो अगर हमको प्रोत्साहन देना हो तो आपको क्या करना चाहिए? एक कम से कम एक किताब लेना चाहिए। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारे पास बहुत पड़ा है घर में, अनेक संस्था के अनेक किताबें पड़ा है, टाइम की तरह पढ़ने के लिए है, लेकिन आप अच्छा काम करते हैं, करते जाइए। तो धार्मिक लोगों को कैसे समझाया जाए? तो मैंने क्या किया, एक व्यक्ति को बोला देखो भगवान आकर तुम्हारे दरवाजा, घर का दरवाजा कटखटा रखा है, लेकिन आप भगवान को नकार रहे हो, बोला मैंने, वो डर गया हो। वो बोला क्या बोल रहे हैं आप? मैंने बोला हाँ, हम भगवान के पोस्टमैन हैं, देखा ना तिलक पहने हैं, कंठी माला पहने हैं, माला हाथ में लिया है, भगवान ने भेजा हमको आपको ये किताब देने के लिए, भगवान के बैंड को आपको लेना चाहिए कि नहीं? मैंने पूछा, अगर भगवान आकर दरवाज़ा कटकटा करके एक भेंट देने के लिए आते हैं, अगर लक्ष्मी आती है आपके घर में दरवाज़ा कटकटते, आपको 1 करोड़ रुपए देना है, आप लेंगे कि नहीं? अरे लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए छत को भी खोल देंगे हम, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला लक्ष्मी के पति आए हैं किताब के रूप में, आपको लेना चाहिए कि नहीं? वो बोला ठीक है हम ले लेते हैं, कुछ शाप मत दे देना हमको, आपकी खुशी के लिए हम एक ले लेते हैं, ऐसे ले लिया उसने। तो बोलने का मतलब क्या है, धार्मिक लोगों को ये आध्यात्मिक किताबों को पहुंचाना थोड़ा कठिन है, देखा आपने कभी कभी ऐसे होता है। तो इन्होंने ऐसे ही सोचा, प्राचीन परिषद को कैसे पिघला जाए इसको, तो नारद मुनि ने सोचा कि ये कामकाज में पड़ा है, बोलेगा टाइम नहीं हमारे पास, अनेक लोग वही बोलते हैं ना, टाइम नहीं हमारे पास। इसलिए नारद मुनि को बोला कि देखो प्राचीन भरि, मैं तुमको सदुपदेश देने के लिए नहीं आया हूँ, एक कहानी बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कहानी सुनने में मजा है, कुछ कहानी, तो ऐसे पुरंजन का ये कहानी बोलूंगा, तुम बैठ कर सुनो। तो बैठ कर सुना वो अच्छी तरीके से, ये उसका सौभाग्य था, संत महात्मा आए थे उसके महल में, उनके साथ बैठकर कहानी सुना पुरंजन का। पुरम जन, पुरम का मतलब है हमारा शरीर, जन का मतलब है आत्मा जो शरीर में बैठा हुआ है। तो ऐसे एक कहानी बोला उन्होंने पुरंजन उपाख्यान, उन्हें बोला कि ऐसे एक शहर था, उधर पुरंजन रहता था। वो शहर क्या है, उनके शरीर ही शहर है। उधर उन्हें बोला कि गोपुरम है, गोपुरम क्या है, नाक है। उधर अनेक पेड़ झाड़ थे, पौधे थे, वो उनका बाल है उसका है। और उधर दो खिड़कियाँ थी, खिड़कियाँ क्या, दो आंखें हैं है। और उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, ऐसा अलग अलग खिड़कियाँ। हम बोला कि नीचे खुला हुआ खिड़की है या ऐसा खुला हुआ खिड़की है। ऐसे उन्होंने शरीर के संबंध में पुरंजन के अलग अलग वर्णन दिया उन्होंने। ये सुनता गया सुनता गया। ऐसे बोलते समय वो बोल रहे हैं इस श्लोक में, नाना अरण्य मृगैर वातैर अनाबाधे मुनिव्रत। इधर बताया गया कि अगर कोई जीव इस दुनिया में शादी करके, उसके स्त्री है, उसके बच्चे हैं, अपने घर में रहता है, अनेक लोग थोड़ा फोटो भी क्लिक करके रखते हैं, आजकल तो सेल्फी आ गया, सब लोग अलग अलग सेल्फी लेकर हैं अपने बच्चों के साथ। मैं ट्रेन में भी देखता हूँ, अनेक लोग अपने बच्चों की वीडियो देखते हैं, बच्चा रोता हुआ, बच्चा तैरता हुआ, आ गया ना आजकल सब स्मार्टफोन में, सब क्लिक करके देखते हैं ऐसे। तो ये व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, अपने बगीचा और अपने नौकरी, ये सब जब सेट हो जाता है एक व्यक्ति को, उसको लगता है कि वाह अभी क्या है इस दुनिया में, बस यही हमको चाहिए था। उसमें एक तरह का शांति को अनुभव करता है व्यक्ति, और शांति और सुख को अनुभव करता है। लेकिन ये असली शांति नहीं है। दो तरह के शांति है, एक है शाश्वत नैष्टिकी शांति है, दूसरा है एक क्षणभंगुर शांति है, कुछ समय के लिए। लेकिन उसमें भी एक तरह का शांति और इसका अनुभव करता है। जैसे आप देखेंगे ये तरुणी लड़कियां, लड़के लड़कियां जो होते हैं, जो उस काल में कॉलेज में जाते हैं, टीनेज में जाते हैं, उस टीनेज में खास करके 13 से लेकर 19 तक जो उम्र है, वो एक स्वप्न का उम्र है। वो लोग ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में। जैसे अगर किसी का 14-15 हो गया उम्र, तुरंत लड़कियों की ओर देखता है तो तुरंत उसके मन में रोमांटिक, रोमांटिक क्या बोलते हैं हिंदी में, रोमांटिक मालूम नहीं किसी को, सब बले बाले बच्चे हैं सब हैं, रोमांटिक मालूम है, वो मालूम है, अच्छा अच्छा वो जान गए। हाँ देखिए रोमांटिक उसके विचारे आते हैं तो ये देखता है तो लगता है कि वो लड़की क्या मेरे लिए अच्छा सेट होगा, क्या मेरे लिए मैच हो जाएगा, क्या हम इसके साथ घूमेंगे, उसके साथ घामेंगे, ऐसे विचारे मन में उठते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा उनको मुफ्त में मिलता है, क्योंकि पिताजी भेज देते हैं पैसा। हाँ पैसा, पैसा का मूल्य ही मालूम नहीं। उस वयस में कोई जमीन के बारे में सोचता नहीं, नौकरी के बारे में सोचता नहीं, बिंदास पॉकेट में पैसा है, तो एक तरह के सपने की दुनिया में घूमता है। सिनेमा के अंदर भी स्वप्न भी दिखाते हैं वो भी लोग हैं, जैसे हीरो हीरोइन के सपने दिखाते हैं, दोनों घोड़े गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में उड़ते हैं आसमान में, ऐसे रंग बिरंगे फूलों के बीच में गार्डन में पेड़ होता है, पेड़ के इधर उधर घूमते हैं गाँवते हैं। ये स्त्री के लिए 10-20 लड़कियाँ हैं और हीरो के लिए और 10-20 पुरुष हैं, और नाच रहे हैं सब लोग। ये दुनिया में होता है क्या कभी ऐसे? अगर आप शादी करते हैं, पर पुरुष से शादी करते हैं, इसके लिए 20 लोग, उसके 20 लोग आएंगे, लेकिन आपको पैसा भरना पड़ेगा आपका। तो इस तरह एक स्वप्न करता है कोई व्यक्ति अपने तरुण अवस्था में ऐसे, और उस स्वप्न की अवस्था होने के बाद जब शादी होता है, शादी में अगर किसी को अच्छा पत्नी मिल गई, अच्छे बच्चे हो गए, उसको घर में एक शांत वातावरण आता है, उस वातावरण के वर्णन किया गया है इधर। तो बच्चे जो हैं वो कुआ कुआ बोलते हैं, वो किसके समान है, कोकिल जो है वो कू कू बोलता है ना, ऐसे बच्चे के आवाज़ उनको लगता है, पिताजी को लगता है। इस तरह ये श्लोक में, पूर्व श्लोक में, अगले श्लोक में भी बताया जा रहा है कि ये हमारे शरीर में कुछ इंद्रिय तृप्ति देने वाले अंग होते हैं, जैसे जिह्वा है, जिह्वा में रुचि प्राप्त होता है। तो एक जीव, बद्ध जीव जो है वो अलग अलग रुचियों को चखना चाहता है जिह्वा से, इस तरह आँख से खूबसूरत पदार्थों को देखना चाहता है, कान से मीठे मीठे आवाजें सुनना चाहता है वो, शरीर से मुलायम विषयों को स्पर्श करना चाहता है, इस तरह और क्या है पांचवा, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, नाक से सुगंधी चीजों को सूंघना चाहता है। तो इसलिए जीव भी क्या करता है, अपने आप को डेकोरेट करते समय क्या करता है, ऐसे सेंट वगैरह लगा कर जाते हैं, क्योंकि लोग सूंघना चाहते हैं। कोई चल रहा हो, कोई सुगंध आ रहा, तो लोग सोचते हैं कितना सुगंधी आदमी है। आदमी सुगंधी नहीं है, सेंट सुगंधी है, दुर्गंध आ रहा है, लेकिन लोग इसलिए तो पहनते हैं ना, क्योंकि आकर्षण करने के लिए है। तो इस तरह का जीव पांच इंद्रियों से आकर्षित होता है। इसलिए हम अभी मैं प्रभुपाद जी की आरती कर रहा था, मैं आरती में जो पांच उसमें क्या है, कापूस लगाकर दिया जलाते हैं ना, इसका मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद जी आचार्य हमारे पांचों इंद्रियों को आपके श्री चरणों में हम समर्पित करेंगे, हम इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे, हमारे सब शरीर, हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे पांचों इंद्रिय आपके हो गए हैं, आप मुझे अपना बना लो, अपना बनाकर कृष्ण की सेवा में लगाओ। ये भक्त की अवस्था है। लेकिन इस दुनिया में भटकने वाले जीव क्या सोचता है कि पांच इंद्रिय जो मिले हैं वाह कितना अच्छे हैं, विविध तरह के पदार्थों को हम भोग सकते हैं, इस तरह पांचों इंद्रियों से वो भोगना चाहता है। इस तरह इसको ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय से इस दुनियादारी चीज़ों को, जैसे आंखों से आजकल क्या लोग देखते हैं, अनेक सिनेमा देखते हैं यूट्यूब में है? आंखों से देख देख कर मन में कल्पना जागृत हो जाता है कि हम इस दुनिया में हम भी भोगेंगे ऐसे, हाँ इस तरह इच्छा होता है। और इस तरह कानों से अनेक अनेक गाना, सिनेमा के गाना सुनते हैं, इस तरह है। तो इस तरह अलग अलग होटल में जाकर बोलते ये होटल अच्छा है, वो होटल अच्छा नहीं है, इस तरह खाते रहते हैं अलग अलग स्थान में जाकर ऐसे। तो इस तरह आप देखेंगे जो जीव पांच इंद्रियों से जब इन चीज़ों को, विषय को अंत लेता है, जैसे जो इसको मन से तुलना क्या है, ये पांच उंगली को श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, ये पांच ज्ञानेन्द्रियों से विषय भोगों को ढूंढ कर मन को सप्लाई कर देता है सब इंद्रिय। तो मन में जब आकर बैठ जाता है, अभी मन में विविध इच्छाएं उठते हैं उसको, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कर्मेंद्रिय है उसको। कर्मेंद्रिय क्या है, हाथ पैर जननेन्द्रिय और क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, गुदा और जिह्वा बोलना, स्पीच स्पीच, इनके द्वारा जीव क्या करता है, उन इच्छाओं को पूर्ति करता है ऐसे, इनके द्वारा ऐसे। जैसे हम पैर से कंपनी जाते हैं, हाथ से काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, कभी कभी हमारे वाक शक्ति को इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को हासिल करते हैं, ऐसे अगर कोई एक पुरुष स्त्री को आकर्षित करना हो तो मीठे मीठे बात करके आकर्षित करता है, मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा करके, है ना ऐसे। तो इस तरह हम पांच कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करके हम भोग के पदार्थों को हासिल करते हैं, उनको भोगना शुरू करते हैं ऐसे। इस दुनिया में सब करता है ऐसे। तो इसलिए एक एक व्यक्ति सोचता है कि इस दुनिया में जब भोग मिलता है, भोग मिलते समय किसी व्यक्ति को लगता है कि ये ही शाश्वत आनंद है, ऐसे लगता है उसको, बाकी कुछ नहीं है। बाद में इसी लीला में नारद मुनि इसके अंतिम पार्ट में प्राचीन परिषद को नारद मुनि बोलेंगे, हे प्राचीन परिषद, एक बगीचे में एक हिरण बैठा था, वो हिरण जो था वो एक घास में बैठा था, लॉन लॉन में घास में बैठा था वो हिरण, और वो घास में ये भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे कुछ, वो सुगंधी फूल थे, और उसमें आकर भ्रमर बैठ रहा था, ऐसे आवाज कर रहा था भ्रमर। तो हिरण को बहुत अच्छा लगा, कितना घास मुलायम घास है और वो जो भ्रमर गूंज रहा है, कितना वातावरण माहौल कितना अच्छा है, तो ऐसे आराम कर रहा था वो हिरण। लेकिन दो पेड़ थे, एक पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा था, ऐसे करता है बाघ, देखा आपने, अपने चाटता है अपने जिह्वा से, देख रहा अच्छा बाघ हिरण बैठा है, तो एकदम कूद पड़ूंगा, टूट पड़ूंगा उसके ऊपर और ख़त्म कर दूंगा, उसको खा लूँगा, ऐसे वो तैयारी कर रहा था, कौन वो बाघ। दूसरे पेड़ के पीछे एक शिकारी था, वो अपने हाथ में धनुष बाण लेकर तैयारी कर रहा था उस हिरण को, उस हिरण को मारने के लिए ऐसे। लेकिन इसको मालूम नहीं था हिरण को, लेकिन इस तरह के दो कतरे थे, तो उसको सुनते ही प्राचीन परिषद को बड़ा शाक लग गया, पूछा कि ये दो लोग कौन है, क्यों आए हैं। वो बोला कि ये प्राचीन परिषद जानते नहीं, हर एक जीव जो है वो जो घास फूस जो है ना, उसको तुलना किया है कि ये घास जो है वो पारिवारिक जीवन है, और जो भ्रमर गूंज रहे हैं वो बच्चे आवाज करते हैं ना, कुआ कुआ कुआ, उसके बराबर है, है? तो इसमें एक डूब जाता है, भगवान को भूल कर सोचता है व्यक्ति कि मैं यही सब कुछ है, है? मुझे जो मिलना है मिल गया मुझे, इससे ऊपर कुछ नहीं, ऐसे सोचने वाले जीव से तुलना किया है। और बाघ जो है वो काल है, और जो शिकारी जो कड़ा है वो मृत्यु है, है? तो काल और मृत्यु ये एक जीव के पीछे पड़े हैं, लेकिन जीव इसको भूल जाता है। ये सुनते ही प्राचीन परिषद को कंपन आ गया शरीर में, बोला नारद मुनि को सही सही बोला आपने, मृत्यु कभी भी हमको मार सकता है, काल सबको निगल रहा है, बस अभी आपने कथा पुरंजनी की कथा जो बोला मैं समझ गया, तो ये कथा जो आप बोल रहे थे तो ये तो मेरे ही बारे में बोला आपने, तो मैं ऐसे ही पुरंजन हूँ, भोग करने वाले जीव हूँ इस दुनिया में, मैं अपने आप को भूल गया, मैं मेरा रिटायरमेंट का एज आ गया, 60 हो गया मेरा, लेकिन बच्चों को भेजा है जंगल में, लेकिन मैं खुद नहीं गया, तो अभी रिटायर होकर हम भगवत कैंकरे में लग जाएंगे, हम तुरंत निकलना है। नारद मुनि ने सोचा कि हमारा काम हो गया अभी, है जिस काम के लिए हम आए थे। तो सब मिनिस्टर लोगों ने बोला राजा को, हे राजा कुछ समय के लिए आप रुको, आपके बेटे आ जाएंगे, वो शासन ले लेने के बाद आप क्या करो, राज्य छोड़कर जंगल के लिए निकल जाओ आप। लेकिन राजा बोला नहीं नहीं आप लोग हैं ना, आप लोग संभालो जब तक मेरे बेटे आएंगे, वो आने के बाद उनको राज्य पदवी में बिठा दो, लेकिन हमारे लिए समय नहीं है, पता नहीं आज नहीं तो कल कभी भी हमारा शरीर छूट जाएगा। ये शरीर जो है एक अच्छा एक अवयव है, एक एक तरह का एक यंत्र है, इसको इस्तेमाल करके वैकुंठ प्राप्ति कर लेना चाहिए एक बुद्धिमान जीव को। लेकिन मैं इतना बड़ा मूर्ख था, मेरे पूर्व जो गुरुजन थे वो लोगों ने हमको धोखा दे दिया, वो लोगों ने हमको कर्मकांड में लगा दिया, लेकिन हमको भक्ति योग में नहीं लगाया। लेकिन नारद मुनि को गुरु के रूप में प्राप्त करके हम हमारा सही बुद्धि जग गया, अभी एक क्षण का भी बर्बादी नहीं करेंगे हम, तत्क्षण निकल जाएंगे हम इधर से। इस तरह बोलकर प्राचीन परिषद जंगल के लिए निकल गया उसके बाद। तो इधर एक महत्वपूर्ण सीख सीखना चाहिए हमको, अगर कोई व्यक्ति परिवार के अंदर प्रवेश कर रहा हो, एक लड़का है 25 का है 30 का है, उसका शादी का समय आ गया, शादी हो रहा है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, रिस्पांसिबिलिटी है, जिम्मेदारी लेना चाहिए पत्नी के लिए बच्चों के लिए उसको। तो उसको वैराग्य नहीं सिखाया जाता है कि तुम सब छोड़कर चले जाओ, ऐसा नहीं बोला जाता उसको, क्योंकि अभी शादी अभी भी कर रहा है वो, उसको पारिवारिक जीवन में रुचि भी होना चाहिए, उसको बच्चों को पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना कृष्ण भावनामृत में। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ बताया है भागवत के अंदर, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन और परीक्षित ऐसे लोग लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग शास्त्र को इतने अच्छी तरीके से जानते थे, शास्त्र में क्या बताया गया है, भगवान की ओर जाना रोशनी की ओर जाने के बराबर है, दुनियादारी चीज़ों में फंसना अंधकार की ओर जाने के बराबर है, इसलिए एक व्यक्ति को अंधकार को मिटाकर रोशनी की ओर जाना चाहिए, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान गृहस्थ होते हैं वो अपने सारे परिवार को साथ में लेकर रोशनी की ओर जाते हैं, ऐसे बताया गया है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर को ही मंदिर बना देता है, अपने पत्नी अपने बच्चों को उनको तिलक पहनकर कंठीमाला पहनकर माला लेकर शास्त्र का पठन करना, घर को घर के आल्टर को सजाना बहुत बढ़िया तरीके से, भगवान के लिए उत्सव मनाना, अनेक वैष्णवों को घर में बुलाकर भोजन बनाकर भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद परोसना सबको, ऐसे एक हमारे पुणे NVCC में एक भक्त है, उसका वॉच का दुकान है, एक बार मुझे भागवत इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया था, मैं गया था, तो पूरा वॉच ही वॉच है दुकान में, वॉच बेच रहे हैं। तो वो दुकान में एक बड़ा कपाट में उन्होंने प्रभुपाद जी की किताबों का डिस्प्ले किया है उन्होंने, तो मैं जब गया था उन्होंने दिखाया, प्रभु जी ये साल में लगभग 1000-2000 किताब चले जाते हैं, मैं रखता हूँ इधर, लोग देखते हैं भगवद गीता देखते हैं, वॉच खरीदने के साथ साथ गीता भी खरीद लेते हैं, और भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, कालोस में हम मैं ही वॉच हूँ, भगवान बोलते हैं ना मैं ही टाइम हूँ, इसलिए वो दुकान में भगवान को बिठाना सही बात है। तो उन्होंने मुझे एक वॉच भी दिया जब गया था मैं, तो वॉच भी दिया और भागवत भी लिया उन्होंने, उन्होंने बोला कि प्रभु जी मुझे इतना आनंद आता है, नौकरी तो हमारा वाच का दुकान है, लेकिन बीच बीच में प्रभुपाद की किताबों को देखता हूँ, मुझे इस्कान का याद आता है, प्रभुपाद का याद आता है, मुझे लगता है कि मैं भगवान का बन गया हूँ, अभी मैं भगवान का हो गया हूँ, उसका शादी हुआ है, उसके बच्चे हैं, फिर भी मानता है कि मेरे परिवार सारे परिवार भगवान के परिवार है, ये इस तरह वो सोचता है इसे। तो आप देखेंगे इस तरह अनेक लोग हैं, कृष्ण रसंसार करो चाड़िया नाचार, बोलिए कृष्ण रसंसार करो चाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हट जीवे रकारण, पातियाचे नाम हट जीवे रकारण, सदावांजन हे सदावांजन, सदावांजन सदावांजन हे सदावांजन, सदावान प्रभुर आज्ञा भये मागिये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भज अपराध शून्य भय लोह कृष्णना, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, अपराध शून्य भय लोह कृष्णना, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण संसार करो चाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सदावांजन हे सदावांजन हे, सदावांजन हे सदावांजन हे, तो इसमें बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, कृष्णेर संसार करो छाड़िया अनाचार, इस दुनिया में अनाचार को छोड़कर तुम कृष्ण के बन जाओ अपने परिवार के सदस्यों के साथ। ये जानते थे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, महाराज गया, महाराज पृथु, सैनिक राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में, या तो परिवार सहित तुम कृष्ण के बन जाओ, कृष्ण को केंद्र बिंदु बना लो। अगर कोई बना नहीं पा रहा है, भोग को छोड़ नहीं पा रहा है, तो उसको दुनिया से विरक्त होकर उसको सब छोड़ छाड़ कर वैराग्य को अपनाना चाहिए उसको, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि पारिवारिक जीवन उन लोगों के लिए है जो परिवार में रहते समय भी अपने सब परिवार के सदस्यों को भगवान के साथ जुड़ेंगे। जैसे स्वयंभू मनु राजा जो है ना, वो जब लौट आ रहा था अपने बेटी देववती को शादी में देकर कर्दमुनि को देने के बाद वापस लौट आ रहा था, एकदम आनंद में था। क्योंकि भारत में आप देखेंगे पिताजी लोग जो होते हैं ना, बेटी का शादी हो गया तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा जिम्मेदारी है बेटी को सेटल करने में। जब वापस लौट आ रहा था, उधर उसके सब प्रजा एकदम धूमधाम से उनकी स्वागत किया। उधर एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया कि स्वयंभू मनु राजा जो था, उसके परिवार इतना बहुत अच्छा गृहस्थ आश्रम था उसका। सुबह उठते ही वो शनाई बजाते हैं ना, ऐसे कीर्तन होता था उसके घर में नहा धोकर। उसके बाद भगवान के शिव विग्रहों का दर्शन करता था, सर झुकता था, भागवत सुनता था, उसके बाद अपने जिम्मेदारियों को पूरा करता था। रात को वापस जैसे रामायण महाभारत कथा ऐसे सुनता था, वो सोते समय भगवान के म्यूजिक सुनते सुनते सोता था ऐसे, है रात को ऐसे। तो इस तरह उनकी पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत गुणगान किया गया है। ऐसे गृहस्थों को कभी खंडन नहीं किया जाता है शास्त्र में। है? जो गृहस्थ अपने अपने घर को मंदिर जैसे बनाकर रखते हैं, दिव्य कार्यों में जुड़े रखते हैं, है? उसमें और ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं तो मंदिर में कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम को आश्रम बोलते हैं, इस तरह घर को भी आश्रम बोलते हैं। आश्रम का मतलब आश्रय लिया हुआ है भगवान के। लेकिन इधर जो खंडन किया जा रहा है क्या है, आप देखेंगे भारत में एक टिपिकल किसी घर में जाइए रविवार के दिन सुबह लोग 8 बजे बेड कॉफी पीते हैं लोग, उसके बाद 9 बजे उठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके साथ सप्लीमेंट भी आता है वो भी लेकर मैगजीन आता है, उधर लेटे लेटे पढ़ते जाते हैं उसको, उसके बाद नहा धोकर आने के बाद सब परिवार के साथ खाना नहीं तो किसी होटल में जाना, और आने के बाद सिनेमा देखना साथ में बैठकर, करते हैं कि नहीं? सब लोग देखा है ना आप लोगों ने, हम लोगों ने भी किया है पहले, हैं इधर भक्ति में जुड़ने के पहले, हैं ऐसे ही लोग बिताते हैं समय भारत में, हालांकि इसका नाम है पुण्य भूमि है, फिर भी लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे परिवार को खंडन किया जा रहा है इधर। हम लोग अभी भागवत को स्थापन के लिए हम जाते हैं, भागवत स्वागतम कार्यक्रम के लिए, कुछ कुछ घर में जाते हैं उनके पास आरती प्लेट भी नहीं है, उनके पास आरती के पैराफेरनेलिया जो सामग्रियां हैं उनके पास नहीं है, उनके पास कुछ लोगों के पास कृष्ण के फोटो भी नहीं है। नए लोग, नए लोग जो बुलाते हैं हमको, उन वो लोग ने क्यों बुलाया है उनको पता चला है कि अध्यक्ष आकर देने वाले हैं कुछ किताब, बड़ा किताब, उनके साथ एक फ़ोटो लेंगे ऐसे, वो लोगों ने बुलाया हम गए। तो अभी मैं भक्तों को बोल दिया एक इसमें कि हम जब जाएंगे सब लेके जाना है। कुछ लोगों के पास आरती की अगरबत्ती है अनेक घर में, अगरबत्ती सबके पास है, दिया नहीं है कुछ लोगों के घर में, कुछ लोगों के पास अगरबत्ती और दिया है, पुष्प नहीं है, वो पुष्प के बदले प्लास्टिक पुष्प लगा दिया पूरा उन्होंने आल्टर में ऐसे हैं। लेकिन किसी के पास पुष्प भी है, दिया भी है, अगरबत्ती भी है, लेकिन शंख नहीं है अनेक घर में। तो शंख बजना चाहिए, शंख बजने से शुभता बढ़ता है, मंगलता बढ़ता है। आप देखेंगे भारत में जैसे उडुपी में नहीं तो हम लोग उधर थे हम्पी में थे, घर घर में शंख बजता है सुबह, शंख बजाना चाहिए। तो आजकल हम लोग भागवत स्वागत में जाते हैं उसमें शंख भी लेके जाते हैं साथ में, किसी के घर में शंख नहीं हो तो शंख हम बजाते हैं, किसी के पास ये नहीं है क्या बोलते हैं घंटी नहीं है तो घंटी भी लेके जाना। तो बोलने का मतलब क्या है, भारत में संस्कृति घटता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लोगों के घर में जाओ पहला चीज अच्छी तरह जो दिखाई देता है बहुत बड़ा टेलीविजन, इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन का है, वो तो सबके घर में है, इतना तक कि वो आपको स्लम में भी मिलता है डिश एंटीना दिखाई देता है, करेक्ट है ना? आप स्लम में भी ट्रेन में जाते समय हम लोग देखते हैं ना, तो गरीब से गरीब अगर उसको हो सकता है कि 3 दिन खाने के लिए मिला नहीं, लेकिन उसको टीवी चाहिए उसको देखने के लिए है। तो टीवी हमारे भौतिक जीवन को संबोधित करता है और आल्टर हमारे आध्यात्मिक जीवन को संबोधित करता है। किस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के घर में बड़ा आल्टर है, पूजा पाठ होता है, पूजा होता है, आरती उतारते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उसका मतलब आध्यात्मिक जीवन में वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्नति हो रहा है उनका। किसी के घर में देखो बड़ा टीवी बैठा है सामने के हाल में, अब पूछो आल्टर किधर है, आल्टर बोलते हैं कहीं तो कोने में एक सीढ़ी के नीचे एक ट्रायंगुलर बना दिया उन्होंने, एक छोटा आल्टर बना दिया उधर और उसको बंद करके रखते हैं, और जब हम जाते हैं वो खोल कर दिखाते हैं कि भगवान किधर, बोलते हैं अंदर है, एकदम अंदर है, हैं देखते हैं कुछ फोटो लगाए, एकदम छोटा स्थान दिया है भगवान को, सुबह उठकर ऐसे आरती घुमाकर छोड़ देते हैं, ये अगरबत्ती घुमाकर छोड़ देते हैं भगवान को, लेकिन हॉल में सब लोग दादा दादी नाना नानी पिताजी माताजी बच्चे सब बैठ कर टेलीविजन देखते हैं। तो टेलीविजन देखने से भौतिक जीवन बढ़ता है, और आल्टर को बिठा कर घर में आध्यात्मिक कार्यक्रम करने से क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति होता है। आध्यात्मिक जीवन का खास लक्ष्य है हम भौतिक दुनिया से हम वैकुंठ वापस लौटे, तो इस तरह यही लक्ष्य है। शास्त्र बताते हैं कि ये जीव जो है इस दुनिया में, हमारे पहला आसक्ति जो है हमारे खुद की शरीर से, ये तो मर मिटने वाली पदार्थ है, मांस हड्डी से बना हुआ ये शरीर जो है, ये बढ़ता है पहले, उसके बाद घटता है, उसके बाद मिट जाता है, मिट्टी से मिल जाता है वो। ये शरीर से आसक्ति जो होता है उसको मोह बोलते हैं। उसके बाद पत्नी बच्चे हमारे मामा मामी नाना नानी काका काकी कोई भी हो, सब लोग उन लोगों के साथ हमारे संबंध जुड़ता है। इंसान क्यों करता है, सर्वप्रथम जब पुरुष स्त्री आकर्षित होते हैं उस आकर्षण का नतीजा है बच्चे। जब पत्नी बच्चे आने के बाद आगे क्या होता है, घर खरीदना होता है, या तो खरीदो नहीं तो किराए में लो, वो लेते हैं। वो सब आने के बाद उसके बाद गाड़ी की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगर पहले अकेला था वो साइकिल में स्कूटर में चलता था, अभी पत्नी है बच्चे भी हैं साथ में लेके जाना, तो एक गाड़ी की ज़रूरत है। उन दिनों में हाथी होता था और रथ होता था, है घोड़ा होता था, रथ होता था, ये सब आता था घर में। उसके बाद दूध चाहिए इसलिए गाय है, घर की रक्षा चाहिए इसलिए कुत्ता है, सवारी के लिए घोड़ा रहते थे, अभी घोड़े के बदले गाड़ी है, अभी घोड़ा को बदलकर गाड़ी बना दिया, हॉर्स को बदलकर हॉर्स पावर बना दिया अभी, हैं ऐसे हैं वो सब रखते हैं। अगर ये सबको संभालना तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए उसके लिए, तो काम धंधा बिजनेस उसके लिए पैसा कमाता है व्यक्ति। इतना ही नहीं, हमें उसके बाद इच्छा होता है कि हमारे रिश्तेदारों को थोड़ा इम्प्रेस करे, हैं तो इसके लिए क्या करते हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं बेग बोरो स्टील। कि कोई व्यक्ति को शादी करना था अपनी बच्ची को, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, अपने मित्रों के पास जाकर पैसा मांग रहा था, तो उसके पास था 15 लाख था उसके पास, लेकिन उसने सोचा कि मेरे बाकी रिश्तेदार शादी के लिए उन्होंने 20-25 लाख खर्चा किया है, मैं कैसे 15 में कर सकता हूँ, करूँगा तो लोग बोलेंगे कि खर्चा नहीं किया तुमने ठीक तरह से, तो और 10 लाख कर्जा लेकर वो खर्चा कर रहा है वो, इसलिए बेक करके ऐसे। क्योंकि गरीब भी हो व्यक्ति, लेकिन इम्प्रेस करने की इच्छा कम नहीं होता है दूसरों को, इम्प्रेस पैसा में है नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना है उसको। इसलिए हम जब तक भक्ति में नहीं आते हैं, हम इस दुनिया में इस तरह के मल पड़े रहते हैं हमारे हृदय में है। एक व्यक्ति था मैंने मिला, इधर नौकरी के लिए आया था वो, कोई तो डिवोटी था वो, उसको पूछा गया कि तुमको नौकरी करने के लिए, वो गृहस्थी था वो, अभी वानप्रस्थ के स्तर पर है, तो हमने सोचा कि वो मुफ्त में ऐसे ही सेवा करने के लिए आ रहा है, आइडिया है उसके पास। वो बोला नहीं हमको 50,000 चाहिए हमको। हमने बोला ऐसे कुछ नौकरी नहीं हमारे पास इधर, सिर्फ सेवा करना तो कर सकते हैं। तो मैंने पूछा उसको, तुम वानप्रस्थ के स्तर पर आ गए, तुमको पैसे क्या जरूरत है, तुमने कमा कर सेविंग किया होगा तुमने? वो बोल रहा है नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने फॉरेन में जाकर बहुत कमाया, मैंने बहुत कमाया, ऐसे इतने कमाया मैंने। वो बोल रहा है कि उसने लगभग ऐसे 50 लाख 60 लाख कमाया फॉरेन में जाकर, लेकिन वापस लौटा कर पूरे पूरे उसके इकलौता बेटी थी उसका, बेटी के शादी में खर्चा कर दिया उसने पूरा। तो बोला कि आज भी हमारे परिवार में सब लोग बोलते हैं कि हमने जो धूमधाम से मनाया शादी, इस तरह हमारे परिवार में कोई नहीं है मेरे समान सक्षम नहीं है इस तरह का शादी करने के लिए, सेटल करने के लिए हमने इतना खर्चा कर दिया हमने। उसको गर्व बहुत है लेकिन पॉकेट खाली है उसका, कुछ सेविंग नहीं किया है वो, इम्प्रेस करने की इच्छा कितना है देखिए आप। अभी वो अपने रिलेटिव्स के पास जाकर याचना कर रहा है, अभी पैसा दो मुझे जीवन यापन के लिए, पैसा नहीं मांग रहा है वो। तो ये बिग है। बारो क्या है, कुछ लोग बारो करते हैं, स्टील भी करते हैं, स्टील का मतलब है कुछ लोग टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं ना, घूस लेते हैं, बोलते हैं क्या करें हमारे 3 बेटी है शादी करना है उनको सेटल करना है, तो इसलिए हम घूस कलेक्ट करना पड़ता है हमको, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन पकड़े जाते हैं तो पूरा रेड होता है, पूरा जो भी पहले इकट्ठा किया सब निकल जाता है हाथ से। तो आप देखेंगे इस दुनिया में बद्ध जीव इम्प्रेस करने के लिए बहुत पैसा कमाना चाहता है, दिखाना चाहता है इस दुनिया में, इस तरह दूसरों को दिखा कर पूरा जीवन ड्रामा बन जाता है उसका, नाटक बन जाता है। तो लेकिन दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना कठिन है, क्यों? आपके पीछे से कुछ लोग चुपके चुपके आपकी निंदा भी करेंगे लोग, क्योंकि प्रभा जी बोलते हैं कि गृह मेदी का मतलब क्या है, एक परिवार दूसरे परिवार से जलता है रिश्तेदार होने के बावजूद भी। अगर एक पुरुष अपने मित्र को दिखाता है, हे देखो मैंने नया मर्सिडीज बेंज खरीदा है, तो मित्र क्या बोलेगा, अच्छा तुमने बेंज कार खरीदा है, बहुत बढ़िया है, सुंदर है तुम्हारा गाड़ी। लेकिन मन ही मन क्या सोचेगा, अरे बेवकूफ, ये तो मेरे स्कूल के दिनों में इतना बुद्धू था, लेकिन अभी बड़े होकर इतना बड़ा कार मिल गया उसको, अरे तुमने कैसे खरीद पाया कार? वो बोलेगा कि मैंने अपने पॉकेट से 10 लाख लगाया, मेरे पिताजी ने और 20 लाख दिया, मैंने मर्सिडीज बेंज ले लिया, ऐसे बोलेगा वो। तो ये सोचेगा कि अरे बुद्धू को भी मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसे मित्र सोचेगा। तो इस दुनिया के लोग अगर आप इम्प्रेस करते हैं उनको, बाहरी बाहर वो मुस्कुराएंगे, बोलेंगे कि आप बड़े हो, लेकिन अंदर ही अंदर जलेंगे वो। इस दुनिया के लोग कोई प्रशंसा नहीं करते, इसलिए बोलते हैं नेबर्स एन वी ओनर्स प्राइड। बोलते हैं ना ऐसे, तो लोग सोचते हैं कि दूसरों के अंदर ईर्ष्या पैदा करना चाहिए, यही इच्छा होता है हाँ, इस दुनिया में ये समस्या है। तो आप पढ़ेंगे भागवत में, गृहस्थ आश्रम में अगर कोई भक्त बनकर रहता है ना, वो एकदम सुरक्षित है। अगर कोई भक्त नहीं है, किसी कोई पुरुष स्त्री बच्चे पैदा करते हैं, एक बच्ची पैदा करते हैं, बच्ची बड़ी हो जाती है, अगर वो परिवार में भक्ति नहीं है उनका, तो बच्ची जो है ऐसे कपड़े पहनती है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, माता पिता बहुत डर के बीच में रहते हैं, ये बच्ची क्या है, सही ढंग से कपड़े नहीं पहनती, इसको देखकर कोई पुरुष इसके पीछे पड़ेगा, कोई इसको तकलीफ होगा, लेकिन बच्ची समझते नहीं, क्योंकि भौतिक चेतना जब होता है ना, दूसरों को इम्प्रेस करने की इच्छा बहुत होता है, इतना इम्प्रेस करो कि खुद को भी बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है, फिर भी लोग इम्प्रेस करते हैं इस दुनिया में इस तरह। इस तरह अगर कोई भक्ति में नहीं है, पति पत्नी के बीच में बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। कभी कभी बच्ची की शादी करना है, लेकिन पुरुष शराब पीता है, नशा लेता है, इन चीज़ों में फंस जाता है, पैसा पूरा खर्चा कर बैठता है, बच्ची बड़ी हो गई है लेकिन शादी के लिए पैसा नहीं घर में, तो आप इसलिए आप देखेंगे कि भक्ति में जब तक इंसान जुड़ता नहीं है, भौतिक जीवन एक तरह के जंगली से तुलना किया है, जंगली जानवरों से तुलना किया है। तो जीव जो इस दुनिया में आता है भगवत नाम को छोड़कर, उस जीव को तुलना किया गया है एक मर्चेंट, एक बनिया के साथ। अगर एक एक बनिया था, वो जंगल में जाकर सोचा कि मैं ऐसे सोना चांद के पहाड़ को तोड़कर सोना को चांदी को लेकर आऊँगा और बिजनेस करके बड़े धनी बन जाऊँगा, इस तरह ही एक आइडिया लेकर, एक उपाय लेकर उसने क्या किया, जंगल के अंदर प्रवेश किया। लेकिन ऐसे सोचते हुए अंदर 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 इतना प्रवेश कर लिया कि उसको सड़क भूल गया, वो कैसे वापस लौटाना। लेकिन जंगल के अंदर आवाज़ सुनाई दिया, बाघ का, शेर का, लोमड़ी का, सियार का आवाज़ सुनाई दिया, ऐसे बताया जा रहा है। उधर अनेक ये जो मधुमक्खी थे उसको काट रहे थे, अलग अलग उदाहरण दिया है, 5 मिनट में पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या है, जीव भी जब इस दुनिया में आता है भोग के धारणा लेकर आता है, दृष्टिकोण लेकर आता है, लेकिन इस दुनिया में आकर क्या करता है, जीव इस तरह फंस जाता है पारिवारिक जीवन में, लेकिन भगवान को भूल जाता है वो। तो पत्नी बच्चों को स्वजन का दस्यु नाम क्यों कहा गया है, कभी कभी ऐसे परिवार होता है कि जिधर पत्नी भक्ति में भक्तिमान नहीं है, भक्ति में जुड़ी नहीं है। जैसे मेरे घर में मेरे माता जी जो थी, मेरे 3 बहन थे, उसको बचपन से उन्होंने सिखाया कि किचन में आओ, कुकिंग कैसे करना है, रंगोली जैसे बनाना, ये सब सिखाती थी बचपन से उनको, इसलिए उनका आदत पड़ गया और स्वाभाविक रूप से किचन में जाकर कुछ काम करना है। अभी उनकी बच्चियां भी ऐसे कर रही है। अभी अगर माता सिखाते नहीं बच्चियों को ऐसे, आजकल की बच्चियां कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल कर लेती हैं, लेकिन उनको चपाती कैसे बेलना वो मालूम नहीं है। चपाती करेंगे तो पराठा हो जाता है, ट्रायंगल पराठा हो जाता है, वो राउंड राउंड नहीं निकलता है, कुकिंग नहीं आता है। तो आप देखेंगे उनको इस तरह का घर में जिधर भक्ति में नहीं जुड़े हैं कोई, वो परिवार लोग एक दूसरे को तकलीफ देंगे, वो आप देख सकते हैं। पति जो है पत्नी को तकलीफ देगा, पत्नी पति को तकलीफ देगी, और बच्चे माँ बाप को सताएंगे बहुत है। बच्चे बोलेंगे पहले आपने हमको सताया, अभी बड़े होकर हम आपको सताएंगे हैं, ऐसे एक दूसरे को सताएंगे, वो परिवार एक जंगल जैसे बन जाता है बहुत बड़ा है। इसलिए बताया गया है कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रिय वादिनी आरण्यम तेन गंतव्यम, यथा गृहम यदारण्यम, ऐसे बोला गया है। मतलब क्या है, अगर कोई माता है वो व्यभिचार करती है, परपुरुष के साथ संबंध रखती है, और जो पत्नी है अगर वो अप्रियवादिनी का मतलब है, हमेशा कटु वचन बोलती है, कटु वचन बोलते हैं ना, कटु वचन बोलती है, भाव भाव करके चिल्लाते रहती है वो, ऐसे घर में रहने के बदले एक पुरुष क्या करना चाहिए, वो घर ही एक जंगल के बराबर है, उसको भाग जाना चाहिए, वानप्रस्थ जल्दी जल्दी लेकर निकल जाना चाहिए है? उसको ऐसे बताया गया, यथारण्यम यथा गृहम ऐसा बोला गया है। लेकिन इधर जो बताया जा रहा है इस तरह भागवत के अंदर इस तरह वर्णन है, इसलिए हम लोग घर को, संसार को कृष्णेर संसार बनाना चाहिए है। अभी कृष्ण देखिए, माताओं के कार्यक्रम होता है पूना में, सत्यवती माता जी, जाना माता जैसे लोग लेते हैं कार्यक्रम, पवित्र माता जी ऐसे लेते हैं कार्यक्रम। इससे क्या होता है, माताएं जब भक्ति में जुड़ती हैं, धीरे धीरे उनको पता चलता है कि हम कौन हैं, परिवार क्या है, तो परिवार में जब भगवान को लाते हैं ना, भगवान को लाने से रोशनी छा जाता है परिवार में, अंधकार मिट जाता है, एक दूसरे के साथ सही ढंग से हम व्यवहार करते हैं, जैसे हम आदर देते हैं, पुरुष लोग समस्त स्त्रियों को, पर स्त्रियों को माता के रूप में देखते हैं सिवाय अपने पत्नी को छोड़कर, हैं इस तरह के अच्छे आदतों को हासिल करने। प्रभुपा जी बोला करते थे कि देखो इस्कान में हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अच्छे अच्छे प्रसाद खाते हैं, एकदम शुद्ध प्रसाद बनाकर भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद पाते हैं, और हम वैष्णव को देखते समय दंडवत प्रणाम करके हम मांसाहार पत्र वैसे करते हैं, आदर के बीच में रहते हैं, एक दूसरे का आदर देते हैं, एक दूसरे को प्रेम देते हैं, और हम अच्छा कार्य करते हैं, भगवान की दिव्य ज्ञान को फैलाते हैं लोगों को, और चार नियमों को पालन करते हैं, किसी भी तरह के बाहर भी पुणे में इतना प्रदूषण है, अंदर सिगरेट पीने की क्या जरूरत है, करके कोई धुआं पी रहा है कोई अंदर, है कितना मूर्खता है, इस तरह सिगरेट फूकना, शराब पीना, अवैध पुरुष संग स्त्री संग करना, नशा लेना इत्यादि को छोड़कर एकदम निर्मल जीवन है इस्कान के भक्तों का। इसलिए आप लोग इस्कान में जो जुड़े हो, आपके सहवास भी बहुत अच्छा सहवास है, आपके मित्र जिनके साथ आप मैत्री जोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोग अपने परिवार को बहुत अच्छे एक वैकुंठ के माहौल के बराबर बना सकते हैं भागवत पढ़कर। इसलिए हम भागवत में अगर पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ खंडन हुआ हो भागवत में, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो उस परिवार के बारे में वर्णन दिया जा रहा है इधर, उस संसार के बारे में, जिधर इंसान अपने पत्नी अपने बच्चों को ही केंद्र बिंदु बना लेता है, जैसे कोल्लू का बैल बोलते हैं ना, वो गोल गोल घूमता हो, हाँ वो उसे छोड़कर बाहर निकलता नहीं, उधर ही रहता है। इस तरह एक पति अपने पारिवारिक भौतिक दुनिया को ही संसार बनाकर गोल गोल घूमता रहता हो, भगवान कौन है, जीवन क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, कुछ जिज्ञासा नहीं है, भागवत का अंकर नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में खंडन किया है भागवत में। ऐसे लोगों को गृह मेदी बोलते हैं उनको, मेदी का मतलब है ऐसे एक लकड़ी है जिसमें कोल्लू का बैल घूमता रहता है ऐसे, तो ऐसे कुछ लोग कंपनी को गोल गोल घूमते रहते, कुछ लोग 16 घंटा बिताते हैं आजकल कंपनी में, कुछ लोग घर को ही अपना केंद्र बिंदु बना लिया है, किसी को फॉरेन जान चाहिए, अमेरिका जाना, अमेरिका 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 का जॉब कर रहा है वो, ऐसे हैं अलग अलग लोग, अलग अलग भौतिक चीज़ को पकड़ कर रखे हैं इस दुनिया में, और वो लोगों का खंडन हो रहा है भागवत में। जिन लोगों ने भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के आश्रय को सबसे महान मानकर उनके आश्रय लिया हो, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, बड़े भाग्यशाली हैं। तो प्राचीन परिषद भी इस तरह अपने भौतिक संसार को छोड़कर वो आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया उसने, और नारद मुनि के उपदेश से भक्ति में जुड़ गया, वो भाग्यशाली भाग्यवान जीव बन गया वो। तो अभी आने वाले अनेक श्लोकों में आप लोग पढ़ेंगे ये पुरंजन की वर्णन आएगा, और पुरंजन कैसे उसका मृत्यु जब आता है, मृत्यु के समय क्या क्या तकलीफें होते हैं। तो हम लोग भगवान की मधुरिमा के बारे में अनेक पढ़ते हैं, साथ साथ संसार में होने वाले तनाव और तकलीफ के बारे में भी पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग इस दुनिया में फंस न जाए, हाँ वो बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम इस दुनिया के आयुषराम में पकड़े जाएंगे। एक छोटी कथा बोलकर मैं आपको आपके ये प्रवचन को विराम दूंगा। ये कथा हमने सुना परम पूज्य नवगिंद्र महाराज से। महाराज बोले कि एक राजा था, उसके बेटे नहीं थे, तो राजा ने घोषणा किया अपने मंत्रियों के द्वारा कि जो भी मेरा प्रजा लड़का आगे राजा बनना चाहता है वो सामने आ सकता है, वो आकर मुझे मिल सकता है, अगर वो योग्य व्यक्ति हो तो मैं उसके साथ उसको मेरा बेटा बना लूँगा, दत्त में ले लूँगा उसको, और वो राजा बनेगा अगले ऐसे। तो कौन राजा बनना नहीं चाहेगा आगे राजा, सब युवराज बनना चाहे, हजारों हजारों युवक लोग आगे उधर वो गेट में उन्होंने एक स्क्रीनिंग डिवाइस लगाते हैं ना हम लोग मंदिर में, ऐसे उन्होंने लगा दिया कि सब उधर एक टेबल चेयर लगा कर उन रजिस्ट्रेशन हुआ सब लोगों का, उधर एक बैंड भी दिया गया, तो बैंड में एक टाइमिंग भी लगाया गया, उसमें बोला गया कि देखो 2 घंटे के पहले तुमको राजा को मिलना चाहिए। वो बोला 2 घंटा कितना दूर है, कितना किलोमीटर है अंदर? वो बोले वो तो 1-2 किलोमीटर है अंदर, पूरा बगीचा पड़ा है, लेकिन आगे एक बड़ा महल दिख रहा है ना, तुमको उधर राजा है मिलना है। वो बोले ये क्या बड़ी बात है, तो हम 10 मिनट में भाग जाएंगे, पहुँच जाएंगे। अंदर गए, एक एक करके एक एक लड़का गया, पहला लड़का गया अंदर, देखा उसने अंदर पहुंचते ही बगीचे में अच्छे अच्छे मिठाई था खाने के लिए, व्यंजन जैसे आप स्वीट शॉप में देखते हैं ना, जैसे गोविंददास में रहता ऐसे ही है, ऐसे ही पड़ा था। तो उसको देखा, उसको देखकर बहुत इच्छा हुआ उसको, जब मैं युवराज बनूंगा इधर आकर बैठूंगा, सब खाऊंगा, लेकिन क्या क्या खाऊंगा वो देख लेना चाहिए है? ऐसे जाकर देखने के लिए गया है, जाकर जलेबी खाया, रसगुल्ला खाया, थोड़ा गुलाब जामुन खाया, ऐसे खाते एक एक आइटम पूरण पोली खाया, खाते गया ऐसे है। ऐसे अचानक ऐसे खाने के बाद पेट भर गया, थोड़ा इजी चाहता और रिलैक्स करने के लिए ऐसे आँख बंद किया, सो गया है? और एक व्यक्ति ने चला, हे उठ जाओ, उठाया उसको, उठ गया, बोला कि अभी बाहर निकलो तुम, बोला कि अभी राजा के पास जाना है, राजा के पास क्या जाना है, 2 घंटा बीत गया तुम्हारा, निकल जाओ, निकाल दिया गया उसको। इस तरह का दूसरा व्यक्ति आया, वो देखा कि सुगंध आ रहा था, वो तो स्वीट शॉप को भी देखा, सोचा कि बाद में आऊँगा मैं इधर है, लेकिन वो सुगंध आ रहा था तो बगीचे में गया, रंग बिरंगे फूल थे, सुगंधी फूल थे, सोचा कि कितना मनोरम अवस्था है, अगर कोई राजा का पुत्र बनता तो कुछ काम करना नहीं है उसको, आ सकता है बगीचे में आकर आराम कर सकता है। तो अलग अलग फूल को लेकर सुगंध को सूंघ रहा था वो, ऐसे वो भी उधर बगीचे में एक जो पार्क बेंच था उधर सो गया वो है, तो उसको भी हकाल दिया लोगों ने आकर 2 घंटे के बाद है। दूसरा आया, तीसरा व्यक्ति आया, वो ऐसे आते हुए देखा, स्विच ऑफ देखा, ये देखा, लेकिन उसको कुछ स्त्रियां हंसने की आवाज़ सुनाई दिया बगीचे में है। जाकर देखा अप्सराएं जैसे खूबसूरत स्त्रियाँ थी, बहुत अनेक स्त्रियाँ थी, तो सोच रहा था कि मैं युवराज बनूंगा तो किस स्त्री से शादी करूंगा, अभी ढूंढ लेना चाहिए है, ऐसे सोचा उसने। तो एक एक स्त्री को देखा कि ये इसका आंखें बहुत सुंदर है, इसके नाक सुंदर है, इसका इसका शक्ल सुंदर है, इसे देख रहा था वो, ऐसे चुनते चुनते 2 घंटा बीत गया उसका है, उसका कॉलर पकड़ कर निकाल दिया लोगों ने उसको भी ऐसे है, ऐसे एक एक करके सब लोगों ने निकाल दिया। तो एक व्यक्ति था वो इधर उधर मुड़कर देखा ही नहीं, उसने अपने लक्ष्य बनाया क्या है, राजा है उधर, उसको स्वीट शॉप से वो भी देखा, एक आम का भी बहुत बड़ा हार चढ़ता उधर, आम का भी सुगंध आ रहा था, देखिए अगर आम का सुगंध आ रहा आप लोग छोड़ेंगे आम को, आम का सुगंध आ रहा था उसको, फूलों को देखा उसने, स्त्रियों को देखा, सब चीज़ देखा उसने, लेकिन उसने सोचा कि देखो ये सब भोग रखा गया है इधर, लेकिन अगर मैं भोग करने वाले राजकुमार बनूंगा तो मैं प्रजा को कुछ भलाई नहीं कर पाऊंगा, तो राजा को निस्वार्थ भावना से प्रजा को अपने पुत्र मानकर प्रजा नाम पितृवत्सल है, ऐसे उसको इंद्रियों का संयम चाहिए, संयम बिना कौन एक राजकुमार बन सकता है। और उसने सोचा कि ऐसे चलते हुए सोचा उसने, अगर मैं राजा बनूंगा तो जरूर मैं एक राज ऋषि बनूंगा, मैं संत महात्माओं को बुलाकर उनसे प्रवचन सुनकर कथा श्रवण करके मैं एक आदर्श जीवन जीऊंगा। इस तरह मन में सोचते हुए वो गया सीधा राजमहल में जा पहुंचा। तो राजा ने बोला देखो आज पूरे दिन में एक ही व्यक्ति तुम पहुंचे हो मेरे पास है? कोई नहीं पहुंचे, सब लोगों का कॉलर पकड़ कर निकाला गया, उनको हकाल दिया गया है, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम ही राजकुमार होने के लिए सक्षम हो, उसको राजकुमार बना दिया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है, ये भौतिक दुनिया भी उस तरह है, हम सब लोग जो आते हैं इस दुनिया में तो कोई कोई फंस जाता है किसी एक इंद्र तत्व में, दूसरा फंस जाता है दूसरे में, तीसरे में, अलग अलग चीज़ों में, तो लोग फंस जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन भगवान भगवत कैंकर्य को भूल जाते हैं वो लोग, बोलते हैं टाइम किधर है, टाइम नहीं है, अभी स्कूल में जाते हैं बोलेंगे अभी पढ़ना है, अभी पढ़ना है, पढ़ना है, मार्क लाना है, ठीक है, अभी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया अभी क्या है, अरे इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने से क्या होता है, नौकरी मिलना चाहिए ना, ठीक है नौकरी मिल गया, अरे नौकरी मिल गया तो क्या होता है, अभी प्रमोशन चाहिए ना, ठीक है प्रमोशन हो गया, अरे प्रमोशन हो गया तो क्या होता है, अभी घर खरीदना है ना, ठीक है घर खरीद लिया, अरे घर तो खरीद लिया, अभी शादी करना है ना, ठीक है शादी हो गया अभी क्या, अरे शादी हो गया तो क्या, अभी बच्चे हुआ नहीं ना, बच्चे होने के बाद हम करेंगे है? इस तरह हरेक व्यक्ति कुछ ना कुछ बहाना बताता रहता है, और अंतिम काल में जब यमदूत आते हैं तभी रोता है इंसान, तभी मलमूत्र विसर्जन करता है, वो पकड़ कर लेके जाते हैं, उसके बाद वो नाम जपता नहीं, बाकी लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी लोग बोलते हैं, वो तो मरा हुआ मृत शरीर है उधर है, पहले राम नाम तो हमेशा सत्य है, ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद सत्य है वो है। एक इधर एक नर्स थी उधर किधर ससुन मेडिकल में है? वो नर्स इधर आई थी है? उसने वो नर्स बोल रही थी, एक दिन हमारे प्रवचन दे रहे थे, हमारे एक ब्रह्मचारी हरा प्रभु प्रवचन दे रहे थे इधर है? तो प्रवचन में हरा प्रभु बोल रहे थे देखो अंतिम काल में आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, अंते नारायण स्मृति है, इसलिए मृत्यु जब आ रहा है हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। नर्स ने पहली बार सुना उन्होंने, उसके बाद वो खड़ी थी बाहर स्थल में, माला ले रही थी वो, हाँ, तो वो बोल रहे थे काश मुझे ये पहले पता होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे बोल रहे थे। हमने पूछा क्यों, वो बोल रही थी उनके अस्पताल में एक हफ्ते पहले, इधर वो आने के पहले एक व्यक्ति मर रहा था, और वो मरने वाला व्यक्ति पूछ रहा था नर्स को, अभी लगता है कि मेरा मृत्यु आ गया, निकट आ गया, मरने वाला हूँ, क्या करना चाहिए मुझे बोला। वो बोली कुछ नहीं करना, चिल्लाओ मत, चिल्लाए बिना मर जाओ, ऐसे बोला उन्होंने, ऐसे बोला उन्होंने। अभी बोली वो नर्स बोली कि अभी पता चल गया, आगे अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलेंगे हरे कृष्ण बोलते हुए मर जाओ, है ना, ऐसे बोली। इसलिए हमें सही ज्ञान की ज़रूरत है। हाँ, तो प्राचीन परिषद को सही ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ नारद मुनि से। तो हम लोग भी इंद्रियों को, मन को संयम करके एकाग्रत चित्त के साथ भगवत कैंकर्य में, भगवत भक्ति में लगना चाहिए, ताकि हम भटक न जाए इस दुनिया में। हम हमारे चित्त व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक कुरुनंदना, ऐसा अगर हम ये राजकुमार जो बना, इस तरह हम भी भगवान के पुत्र, भगवान की पुत्री बनकर हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं इसी जन्म में। अगर हम इस दुनिया में ना भटकते हुए हम भागवत पढ़कर, नाम जप कर, भक्तों के संग में रहकर हमारे संसार को कृष्णेर संसार करो चाड़ियानाचार्य, इस तरह करके जाएंगे तो ज़रूर भगवान प्राप्त होंगे, सब लोगों के लिए भगवान प्राप्त होंगे। कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, गौर भक्तवृंद की।